Hare Krishna, this lecture on Srimad Bhagavatam, 1st Canto, 13th Chapter, Shloka number 58, What is Ideal Wife? Given in ISKCON Dwarka Temple on 1st January 2016 by myself, Prashant Mukund Das.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Jaya Rukmani Dwarkadhish, Rukmani Dwarkadhish, Rukmani Dwarkadhish, Jaya Rukmani Dwarkadhish, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Jagannatha, Jaya Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya Prabhupad, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol,
श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री पंचतत्व गौर निताय की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज की नववर्ष की प्रथम श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम के 13वें अध्याय 13 चैप्टर के 98वां श्लोक जो है 58 उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सब लोग साथ में दोहरा सकते हैं। दाहमाने अग्नि भी देहे पत्यो पत्नी सहोटुजे बहिं स्थिता पतिम साध्वीं तम अग्निम अनुवेक्षति दाहमाने अग्निभिदेह पत्युं पत्नी सहोटजे बहिस्तिथापति साध्वी तमग्ने मनोविक्षति दाहमाने अग्निभिदेहे पत्युं पत्नी सहोटजे सहोटजे बहिं स्थितापति साध्वी तमग्ने मनुवेक्षति
दहिमाने धरीर्वे देहे
दहिमाने अग्निभिदेहे पत्नी सहोटजे अहिस्थितापतिं साध्वी तम अग्नि मनुवेक्षति दहमाने अग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे अहिस्थितापतिं साध्वी तम अग्ने मनुवेक्षति दहमाने अग्निभिदेहे पत्युर्पत्नी सहोटजे माता जी अग्निभिदेहे पत्युं पत्नी सहोटजे दहमाने अग्निभिदेहे पत्युं पत्नी सहोटजे तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब लोग साथ में दोहरा सकते हैं। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तात्पर्य बहस डिवाइन लॉ श्रील प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की। गांधारी एक आदर्श सती नारी थी, वे अपने पति की जीवन संगनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्ण कुटी समेत जल रहे हैं तो वे निराश हो गईं। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतः वह भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई, क्योंकि यह प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपे जाने लगे। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गंधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीक होता था। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता। जब यह प्रथा औपचारिकता बन गई तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा, तब यह सचमुच अपराध पूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद करना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकांतिकम्। वंदेहं श्री गुरुन् श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है इसके अंदर धृतराष्ट्र और गांधारी जो कि कौरवों के दुर्योधन जो था उसके माता पिता, और जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद में विदुर के प्रवचनों के द्वारा तकरीबन 15 साल बाद इन दोनों ने क्या किया, अपने घर का परित्याग किया और फिर एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। तो पर्णकुटी क्या होती है, जैसे झोपड़ी बनाते हैं घास उसकी कुटिया, और उसके अंदर ही ये दोनों विराजमान रहते थे और भजन करते थे। तो यहाँ पर जो गांधारी हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की प्रथम लाइन में लिखते हैं, गांधारी एक आदर्श सती नारी थी। तो जैसा प्रभु जी ने भी आदेश किया कि इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि सती नारी का क्या अर्थ है और गांधारी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, और अनेक माताएं जो हमारे शास्त्र ग्रंथों में जिनकी चर्चाएं हुई हैं। तो गांधारी जो है उन्हें बुद्धि यानी मति का साक्षात अवतार बताया गया। मति बुद्धि, तो ये गांधारी को बुद्धि का अवतार बताया गया। और ये गांधार जो नरेश थे उनकी पुत्री थी, उनका नाम था सुबल। वो वाले सुबल ने जो कि कृष्ण भगवान के सुबल जो मित्र सखा थे, ये सुबल जो राजा थे गांधार नरेश, जिस स्थान को आज कांधार बोला जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो जगह है कांधार, वहां पे टेररिज्म बहुत होता है, वो जो जगह थी वहां से कांधार से कांधारी मतलब गांधार से गांधारी थी। और उनके भाई शकुनी टेररिस्ट ही थे, वो भी एक तरह के, बड़ा इतना बड़ा युद्ध कराया उन्होंने, वैसे ही आईसीआई एजेंट जो होते हैं ना वैसे ही थे वो भी। तो जब ये बुद्धि जो गांधारी जिनका अवतार हुआ महाभारत में, तो इनके पिता सुबल से भीष्म पितामह मिलने आए और उन्होंने कहा हम चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो ब्रह्मचार्य रहने का व्रत लिया है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भाई हैं सबसे बड़े धृतराष्ट्र उनका विवाह आपकी पुत्री गांधारी से हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, सारा कुछ सेटलमेंट हो गया और विवाह होने वाला है। तब पता चल रहा है गांधारी को कि मेरा पति जिससे मेरा विवाह होने वाला है वो कौन है, नेत्रहीन है। अभी नेत्रहीन के साथ में कैसे अपना जीवन गुजारे, तो उनके माँ बाप ने सोचा कैंसिल, रिश्ता कैंसिल। लेकिन गांधारी एक ऐसी स्त्री है, उन्होंने निर्णय लिया नहीं, मैं विवाह तो करूंगी और पूरा जीवन अपने पति को नेत्रहीन बन के जैसे मेरे पति हैं वैसे ही उनका सहयोग करूंगी, क्योंकि कहीं उनको कभी इस बात का अफसोस ना हो कि अरे मेरे तो नेत्र नहीं है और मेरी पत्नी के नेत्र है, मेरी पत्नी मुझसे आगे कैसे है। जैसे आज के समाज में सारी स्त्री जो है वो आगे निकलना चाह रही है, रेस लगी हुई है, मैं आगे तो पीछे, कौन सी स्त्री आगे कौन पीछे, सब रेस लगी हुई है। फैक्चुअली देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री जो है वो इस प्रकार से है कि बचपन से उसको अब लक्ष्मी के रूप में घर में सजो के रखना चाहिए। जब वो छोटी हो तो अपने पिता के संरक्षण में रहे, जब वो थोड़ी बड़ी हो तो उसका विवाह किया जाना चाहिए। इस्कॉन संस्था या किसी भी आश्रम में, किसी भी परंपरा में स्त्रियों को ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनना या सन्यासिनी बनना नहीं बताया गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग अक्सर हम देखते हैं, लोग करते हैं, अरे ये तो ब्रह्मचारिणी है, अरे ये तो सन्यासिनी है, लेकिन इस तरह का कोई शब्द है ही नहीं शास्त्र में, सन्यासिनी या ब्रह्मचारिणी। तो स्त्री के लिए तो बना है कि वो विवाह करे और अपने पति के शरणागत होकर और फिर अपना जीवन व्यापन करे, और जब वो बुजुर्ग हो तो उस समय अपने पुत्र के ऊपर निर्भर हो, इस तरह का नियम बताया गया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि दोनों कंधे से कंधा चलाकर मिलाकर चलेंगे। तो एक बार तो हमने पूछ लिया था, आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर तो चलते हैं, उसके बाद जब मेट्रो ट्रेन में रिजर्व सीट को बनवाते हैं दो लिखते हैं वहां पर रिजर्व फॉर लेडीज ओनली टू सीट्स, एक डब्बा पूरा बोगी फॉर लेडीज वुमेन, व्हाई स्पेशल, इफ यू आर स्पेशल देन बी स्पेशल, बी सर्वेंट ऑफ दी हस्बैंड, इस तरह से बताया गया। प्रभुपाद जी बोलते थे क्यों आगे निकलना चाह रहे हैं, जब जाते हैं बच्चे का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तो फॉर्म के ऊपर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फादर्स नेम। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा कुछ है ही नहीं कि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, इसका मतलब ये कि हम उनको सम्मान नहीं देंगे। सम्मान तो देंगे, आप देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए माताओं को जो कि प्रभु जी के पास भी नहीं थे। विद्या का डिपार्टमेंट किसको दिया गया, सरस्वती जी को दिया गया। लक्ष्मी का डिपार्टमेंट किसको दिया गया, लक्ष्मी देवी को दिया गया। पैसों का डिपार्टमेंट लक्ष्मी देवी को दिया गया। शक्ति का डिपार्टमेंट किसको दिया गया, दुर्गा देवी को। तो ये सब माताओं का सम्मान तो है, डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो बांटे जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं सिखाया गया कि है ना, जैसे एक बार वो बोल रहे थे कि पति को शेर होना चाहिए, पति को शेर होना चाहिए, फिर आगे बोलते हैं और पत्नी को शेरा वाली शेर पे सवार हो जाते हैं ना तो पति को शेर नहीं होना चाहिए और ना शेरा वाली होना चाहिए। अब देखिए शेरा वाली जो है दुर्गा, वो भी किसके शरणागत होती है, शिव जी के, पार्वती दुर्गा शरणागत है ना अपने पति, और जो सरस्वती है वो भी ब्रह्मा जी को शरणागत है। लक्ष्मी जी सदा विष्णु के चरण दबा रहे हैं। तो हमको सीखना चाहिए कि ये जो इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट पोर्टफोलियोज लेकर भी अपने हस्बैंड की सेवा कर रही हैं। तो इस तरह से गांधारी ने भी कहा कि मैं निर्णय करूंगी कि आंखों पे पट्टी बांधकर अपना जीवन व्यापन करूंगी, और उसी तरह से उनको सती होने के कारण शक्ति प्राप्त हुई, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि अगर पट्टी एक बार खोल दें और जिसको देख लें वो फिर वज्र का लोहे का बन जाएगा। और अपने युद्ध के, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उन्हें लगा कि अब तो कौरव हारने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्र को अपनी शक्ति के बल से कठोर बलशाली लोहे का वज्र का बना दूं। तो उन्होंने बोला देखो दुर्योधन, कल तुम मुझसे मिलने आना और अब विवाह के इतने साल बाद मैं अपने नेत्र खोलकर तुम्हें वज्र का बना दूंगी। तो भगवान कृष्ण सोचा ये वज्र का बन गया तो मरेगा नहीं और युद्ध तो चलता रहेगा, और युद्ध तो 18 दिन में समाप्त करके और फिर इसकी शिक्षाएं आगे लोगों को बांटनी है, तो फिर क्या किया जाए। तो जब वो जा रहा था दुर्योधन, तो भगवान कृष्ण रस्ते में मिलते हैं, कहते हैं अरे दुर्योधन ये तुमको क्या हो गया, आज निर्वस्त्र घूम रहे हो, लगता है अपना बर्थडे याद आ गया तुमको, पहले बच्चा पैदा होता है ना बिल्कुल निर्वस्त्र होता है, बर्थडे याद आ गया तुमको अपना। तो कह रहा है कि नहीं नहीं, आज तो मेरी माता ने मुझे स्पेशल पावर शक्ति देने के लिए बुलाया है, ने कहा इतने सालों बाद माँ जब पट्टी खोल के देखेगी तो देखेगी है मेरा बेटा नंगा घूम रहा है, अरे अभी तो बड़ा ही नहीं हुआ। इस तरह से जब उन्हें समझाया तो मान गए, कहते ठीक है कम से कम क्या करता हूँ अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको ढक सकता हूँ। तो उन्होंने फिर उसको ढककर जब अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ ने जब अपनी पट्टी उतारी तो ढैंग पूरा वज्र के बन गए, लेकिन वो जंघा जो थी उनकी वो कैसी रह गई, सॉफ्ट कोमल जैसी थी, और उसी कारण बाद में वो दुर्योधन जो थे वो भीम के गधा प्रहार से मारे गए। तो ये देखिए सती के अंदर कितनी ताकत है, अगर कोई स्त्री सती हो तो वो ऐसा कर सकती है। और ये जो सती थी, जब इन्होंने देखा कि विदुर के प्रवचन के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों घर छोड़कर चले जाते, तो ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो घर में ही रहूंगी इनको जाने दो, जैसे माताएं बोलती है ना प्रभु जी आजकल बहुत भजन करने लगे हैं, ठीक है प्रभु जी आप मंदिर जाओ मैं तो घर में रहूंगी, बच्चे कौन देखेगा, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, पद पावन शील प्रभुपाद की जय। बच्चे कौन दिखेगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आता है, धृतराष्ट्र सह भ्राता गांधार्य चा स्वयं भार्या दक्षिणे हिमवत ऋषिणाम आश्रमम गतः। दक्षिण क्षेत्र में हस्तिनापुर से जो हिमालय पड़ता है उस स्थान पे ऋषियों के आश्रम में जाकर पर्णकुटी बनाकर 15 वर्ष तक कहाँ रहे, 15 वर्ष तक पर्णकुटी के अंदर और अपने पति की सेवा करती रहे। और एक दिन उनके पति ने योग शक्ति से उस पर्णकुटी में आग लगा दी, और जब वो किसी काम से पर्णकुटी में बाहर थी और देखा कि अग्नि लग रही है तो बहुत वियोग हुआ कि कैसे मैं इनकी सेवा कर पाऊंगी, ये तो चल दिए अपनी जो अपनी ये जीवन है इसको समाप्त करके, तो वो भी साथ साथ में प्रवेश कर गए। लेकिन कुछ समय बाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको क्या बना दिया गया, प्रथा बना दिया गया, पत्नी पति की अग्नि पे जबरदस्ती अटैचमेंट है या नहीं उसको बिठा दिया जाता था और उसको फिर बाद में बंद किया गया। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं था कि सती का मतलब कोई जोर जबरदस्ती, सती होने का मतलब इतना अटैचमेंट कि उनके बिना रहा ही नहीं जा रहा है, ये शक्ति होती थी। तो वर्ण आश्रम धर्म में स्थितियों की इस प्रकार से वर्णन किया गया कि स्त्री जो होती है मतलब जो औरत है उसको घर में लड़की पुत्री या पत्नी तो उनको किस तरह से उनकी इज्जत देनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता विराजमान होते हैं। लोग सोचते हैं हमारे घर में क्या है, टेंशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि वो जो स्त्री है उसको या तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बनकर नीचे दबा रहे होते हैं या फिर बहुत बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें सही तरीके से, अगर हम उनकी पूजा करें, पूजा का मतलब ये नहीं कि भगवान को हटाएं ऑल्टर पे रख दें अगरबत्ती करें जय जगदीश हरे दुर्गा मैया, नहीं इस तरह से नहीं करना है। उनको करना है जैसे बोल रहे थे कि लड़की जब छोटी होती है तो उसको बच्चा उसके पापा और मम्मी रानी बना के रखते हैं घर में, रानी बना के रखते हैं, रानी बेटी मेरी रानी बेटी घर में रानी बना के रखते हैं। थोड़े दिनों बाद जब वो विवाह करके जाती है तो लोग कहते हैं जी हमारे घर लक्ष्मी आई है, बहू आई है। और फिर कुछ समय बाद वो काम कर करके एकदम काम वाली बाई बन जाती है। तो वो बोल रही थी कि अरे अगर देखा जाए फैक्ट्री तो वो बाई नहीं बनती है, वो बनती है पहले रानी फिर लक्ष्मी फिर बाई, रानी लक्ष्मी बाई बन जाती, तलवार लेके घूमती रहती है घर के अंदर। तो एक्चुअली रानी लक्ष्मी बाई नहीं हमें बनना है, स्त्री को किस तरह रहना चाहिए ये बताया गया है। भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को और मनु महाराज मनु संहिता में वर्णन करते हैं कि प्रत्येक स्त्री को प्रेम सादर आदर सम्मान सब कुछ प्रदान करना चाहिए, और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां कभी भी कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। लोग सोचते हैं हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, वो इसलिए क्योंकि वो स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं। माँ हो चाहे पत्नी हो चाहे पुत्री हो उसका सम्मान होना चाहिए। स्त्रियां संपन्नता एवं लक्ष्मी का प्रतिरूप मानी गई हैं शास्त्रों के अनुसार। प्रभुपाद जी ने कहा इसीलिए इस कौन में हम सारी माताओं को जो भी पुत्री हैं पत्नी हैं जितनी भी, पत्नी को नहीं अपनी पत्नी को नहीं दूसरे की पत्नी को माता जी कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अपनी पत्नी को भी माता जी बोलने लगे तो ये रिलेशनशिप रॉन्ग है। एक्चुअली अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सारी को मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यन्ति सा पंडितः, वो व्यक्ति पंडित है जो ये तीन कार्य करता है। मातृवत परदारेषु दूसरे की पत्नी को माता के समान मानता है, पर द्रव्येषु लोष्टवत दूसरे का द्रव्य पैसा उसको क्या मानता है, अरे ये तो कोई टूटे हुए टुकड़े के समान कांच के टुकड़े के समान या फिर पत्थर के जैसा है, मेरे किसी काम का नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु और हमेशा दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है, इसीलिए वैष्णव को बोला गया परा दुखे दुखी, और हम लोग हो जाते हैं उल्टे परा दुखे सुखी परा सुखे दुखी, दूसरे के दुख में जो है बड़े खुश होते हैं। आपको पता है पास वाली की लड़की भाग गई, अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला, चलो मिलकर आते हैं, हमने सुना आपकी लड़की भाग गई बहुत दुख हुआ, अभी दुख थोड़ी हो रहा है इनको बड़ा मजा आ रहा है। तो परा दुखे सुखी होते हैं, और परा सुखे आपसे बड़ी गाड़ी कोई खरीद के ले आए ना होंडा सिटी और वो घर के आगे खड़ी कर दे तो उसके बड़ी गाड़ी है तो उसका थोड़ा सा आगे का हिस्सा आपके घर के आगे भी आ रहा है, पता नहीं क्या कर दिया, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने क्या जरूरत थी आपको इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की है। और अपने घर में तो फिर पूरा महाभारत शुरू हो जाता है, अरे देखो अब बड़ी गाड़ी ले आए, देखो रात दिन मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, पता नहीं क्या चीटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी तो ले आए, आप तो बस लगे रहो राजा हरिश्चंद्र बन के, सत्यवादी बन के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, क्या जाता है, हमारे घर भी बड़ी गाड़ी होती। तो ये प्रेरणा नहीं देनी चाहिए स्त्री को, ये गलत है, प्रवोक करती है। और फिर पुरुष निकल जाता है, हाँ अजामिल बनकर ही लौटूंगा आज, डाकू बना देती है ब्राह्मण को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्त्री को नॉर्मल तरीके से बोलना चाहिए कि बस आप जो करें जैसे रखें उसमें मैं संतुष्ट हूँ, हाँ हर एक परिस्थिति में आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। हरे कृष्णा। तो समाज में सती स्त्री जो है वो क्या कर सकती है, सतो गुण को विराजमान कर सकती है सती स्त्री। वैसे तो ज्यादातर घरों में हम जाते हैं जहां पर काउंसलिंग के लिए मिलने के लिए, रजोगुण और मैक्सिमम तमोगुण ही नजर आता है, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते, चाहते हैं हम बात तो करना चाहते हैं आपसे लेकिन अकेले में प्रभु जी, क्योंकि पति जो है वो पत्नी के बारे में एक चिट्ठी देना चाहता है और पत्नी पति के बारे में। लेकिन अगर सती स्त्री हो तो अपने घर में सत्वगुण को विराजमान कर सकती है, और भगवान कहाँ रहते हैं, जहां सत्वगुण होता है ना। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे घर में भगवान विराजमान हो तो स्त्री को सती रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। पत्नी को अर्धांगनी भी कहा गया है, पति का आधा अंग, तो इसमें बेनिफिट मिल जाता है माताओं को। कहते हैं जो पति की सेवा करती है पत्नी, और पति करता है सेवा गुरु की, और गुरु सेवा करते हैं कृष्ण की, तो कृष्ण की कृपा मिलती है गुरु को, और गुरु की कृपा मिलती है पति को, और पति को कृपा मिल जाती है पत्नी को। तो इसका मतलब पत्नी को माला करने की आवश्यकता नहीं है, हरि बोल आप लोग घर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, सबको अपनी अपनी आत्मा है और अपना अपना हवाई जहाज खुद उड़ाना है, तो सबको जप करना पड़ेगा, सबको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर कोई सती स्त्री बनकर अपना जीवन यापन करती है तो सच में पुरुष का आधा भक्ति का भाव उसे भी प्राप्त होता है, चाहे वो जो है कुछ करे ना करे, लेकिन उसको सेवा करने में, भक्ति करने में सहयोग करने वाली पत्नी होनी चाहिए। ये नहीं कि घर जाकर झगड़ा करे और फिर भी 16 माला का आप 8 माला बोले, लेकिन 8 तो मैं भी करती हूँ प्रभु जी, ऐसे नहीं है उसको, वरना फिर तो प्रभु जी को 32 माला करनी पड़ेंगी, है ना। तो इस तरह नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर पुरंजन की कथा आती है, उसमें बताते हैं कि जो शरीर है ये किले के समान है, और इसमें इंद्रियां डाकुओं के समान, और जो पत्नी है वो प्रमुख सेनापति है। तो जब किसी का चेतना पर आक्रमण होता है उसकी इंद्रियों का, मतलब इंद्रियां जो है वो कौन है, डाकू, और उसकी चेतना कॉन्शियसनेस पर जब आक्रमण करती है उसकी इंद्रियां, उसका मन भटकता है, अब तो शादी के बहुत दिन हो गए, अब चलो मैं कहीं और जाकर देखता हूं कोई सुंदर स्त्री, तो स्त्री जो है उसकी पत्नी, उसके पास इस बात की शक्ति है कि वो अपने पति को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। कैसे, तलवार निकाल के, नहीं नहीं बताया गया, प्रेम पूर्वक सम्मान की भावना से अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है तो फिर पति अपनी पत्नी के वश में रहता है, मूल मंत्र माता जी इसको आज दिया गया। तो ये पत्नी अपने पति को वश में कर सकती है, और जो उसका शरीर है किले के समान, उस पर उस इंद्रियों का कोई हमला नहीं होगा, डाकू का कोई हमला नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बार एक व्यक्ति था जो कि हैंडीकैप था, और उसकी पत्नी से विवाह किए उसे काफी वर्ष बीत गए थे, और वहां पर एक वैश्या रहती थी उसी नगर में। तो ये व्यक्ति चाहता था कि मैं वैश्या के साथ जाऊं और उसके साथ में संग करूं। जब इस तरह से इन्होंने बोला अपनी पत्नी को एक दिन, कि वो बोलती है कि क्या बात है, आप मेरी तरफ देखते नहीं, मुझसे बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता हूं, मेरा प्रेम हो गया है उस स्त्री से। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो देखिए सती स्त्री कैसी है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो उस हैंडीकैप व्यक्ति को लेकर उस वेश्या के घर जाती है और कहती है कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप सिर्फ क्या करिए, मेरे पति को सुख प्रदान करिए। तो वो समझ जाती है कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके पास भी बुद्धि थी, और वो कहती है, अच्छा क्यों तुम मेरे साथ संग करना चाहते हो, क्यों तुम मेरे पास आना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी सुंदरता से प्रभावित हूँ, आकर्षित हूँ। तो फिर वो स्त्री अंदर जाती है और दो कटोरी में खीर लेके आती है, एक लोहे की कटोरी होती है और एक चांदी की कटोरी होती है, और कहती है, लो खीर खाओ। तो सोचता है, अच्छा खीर खाने को दे रहे हैं, तो एक कटोरी खीर खा लेती है। उसके बाद कहती है, एक और कटोरी खीर खाओ। तो ये तो प्रेम में आकर्षित था उसके रूप से, और ये दूसरा भी कटोरी खीर खा लेता है। तो फिर वो स्त्री कहती है, आपने दो कटोरी से खीर खाई, आपको कुछ भेद लगा, दोनों में कोई डिफरेंस था? तो कह रहे नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था। कह रहे ऐसे ही कटोरी की सुंदरता कैसी है, चांदी या लोहा, लेकिन उसका जो रस स्वादन है, सुख है, वो तुम्हें जो अपनी स्त्री से मिला है वही तुमको मुझसे भी मिलने वाला है, इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मेरे पीछे घूमने में मत गवाओ। इस तरह का प्रभुपाद जी ने कहा। तो ये सती स्त्री ऐसी है कि अपने पति को शिक्षाएं भी दे सकती है अगर वो चाहे, उसके पास इतनी शक्ति है। हाँ, ज्यादातर लोग लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ध्यान पूर्वक स्त्री को इस तरह से कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार एक पति से पूछा कि भाई क्या हुआ, बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हो, काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? कह रहा क्या करूं, मेरी पत्नी मेरे बिना खाना नहीं खाती है, चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए। कह रहे बड़ी सती स्त्री मिल गई कलयुग में, आपके बिना खाना ही नहीं खाती है? कह रहे नहीं, मेरे बिना खाना नहीं खाती है। यार क्या बात है, ऐसा क्या आपने जादू किया? कह रहे जादू कुछ नहीं, मैं घर जाके बनाता हूं तो फिर खाते हैं हम दोनों। तो फिर इस तरह की सती नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सती नहीं होनी चाहिए। पत्नी जो है ना, पति को पद भ्रष्ट होने से भी बचा सकती है। जैसे मंदोदरी, मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक है। मंदोदरी ने अपने पति को कई बार समझाया कि आप रामचंद्र से झगड़ा मत करिए, ये नारायण स्वरूप है, इनसे झगड़ा करने से क्या होगा, आप जो है मर जाएंगे, अपने प्राणों की बलि चढ़ा देंगे। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार में उनको यही लग रहा था मैं ही हूं त्रिलोकी का स्वामी, मैं लड़ जाऊंगा, राम मुझसे क्या कर सकता है, एक वनवासी वेश में एक पुरुष मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और इवन जब रावण को खबर मिली कि रामचंद्र जी जो है उन्होंने सेतु बनाना शुरू कर दिया है, और उनकी वानर सेना ने एक पे एक पत्थर डालकर एक पुल सेतु बनाते आ रहे हैं, रामेश्वरम के एक किनारे से दूसरे किनारे लंका तक चले आ रहे हैं, तो मंदोदरी ने फिर से कहा, मंदोदरी रावण से कहा, देखो अब तो सेना लंका तक पहुंच गई है, कम से कम अब तो समझ जाओ ये भगवान है जिनके नाम से पत्थर तैर रहे हैं। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी तैरा सकता हूं। तो मंदोदरी ने कहा ये शक्ति तुम्हारे नाम में भी है? ऑब्वियसली। उसने कहा मेरे नाम में भी है। अच्छा करके दिखाओ। तो फिर दोनों मंदोदरी और रावण समुद्र के किनारे जाते हैं। रावण एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और ऐसे करके फेंकता है, तो क्या होता है, पत्थर डूबता तैरता है, तैर जाता है। हैं, कमाल हो गया, रावण ने पत्थर फेंका फिर भी तैर गया। तो फिर मंदोदरी पूछते, बताओ ना आपने क्या मंत्र पढ़ा, आपने क्या बोला, कैसे ये पत्थर तैरने लगा? तो रावण बोला, मैंने बोला देख इज्जत का सवाल है, तैर जा तुझे राम की कसम। तो पत्थर तैर जाता है, रामचंद्र की कृपा से, नाम राम से बड़ा राम का नाम, उनकी कृपा से तैर जाता है। लेकिन मंदोदरी ने समझाया अपने पति को, देखो तुम ये सब मत करो, मारे जाओगे, और अंत में वो मारे गए। इसी तरह से गांधारी ने भी अपने धृतराष्ट्र अपने पति को सलाह दी थी कि आप क्या करिए, छोड़ दीजिए इस महाभारत के युद्ध का, ये जो होगा इससे क्या होगा, कई लोग मारे जाएंगे, अरबों खरबों की सेना मारी जाएगी, और हमारे पुत्र और पांडवों के पुत्र मारे जाएंगे। इस तरह से उन्होंने काफी समझाया लेकिन वो माने नहीं। और रामायण के अंदर एक और लीला आती है जिसमें बोलते हैं किष्कंधा की लीला, जिसमें वहां दो बहुत महान वानर रहते थे, एक सुग्रीव और एक वाली, आप सभी जानते हैं। सुग्रीव की पत्नी रोमा थी और वाली की पत्नी थी तारा, वाली बड़े भाई थे। तो जो वाली थे उनको एक बार किसी मायावी राक्षस ने आकर ललकारा, कहा वाली, ओ वाली बाहर निकल, किष्कंधा पर मैं कब्जा करने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आता हूं। तो दोनों भाई सुग्रीव और वाली भाई थे, दोनों को यूनिटी थी दोनों के अंदर, दोनों साथ थे। जब अकेले अकेले होते हैं तो वो ताकत नहीं रहती है, भक्तों को भी सीखना चाहिए, जब हम अकेले अकेले रहते हैं तो हमारी सेवाएं उतनी प्रभावशाली नहीं होती हैं। हर व्यक्ति सोचता है मैं अकेला कर लूंगा ना तो बस मेरा ही नाम हो जाएगा। एक्चुअली गलत थॉट है। हम भक्तों को मिलकर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सबका एकमेव कर्तव्य क्या है, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना। लेकिन पता नहीं क्यों हम अलग 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 होते होते, जैसे पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अभी तो न्यूक्लियर भी अलग हो गई है, पत्नी अलग रहती पति अलग रहता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबको इकट्ठा रहकर सेवा करनी चाहिए। तो हम इस लीला से सीख सकते हैं, बाली ने जाकर मायावी राक्षस के साथ युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उन्होंने सुग्रीव को बोला था कि देखो मैं इसको गुफा में ले जा रहा हूँ मारते मारते, और अगर मैं ना निकलूं तो तुम किष्किंधा के राजा बनकर सारा राज्य संभाल लेना। और फिर इसी तरह से हुआ, वो उस गुफा के अंदर युद्ध करते करते चले गए। बाहर काफी देर हो गई, जब कोई निकला नहीं तो देखा कि बस खून की कुछ धाराएं बाहर आ रही हैं। तो सुग्रीव को लगा, लगता है मेरे भाई मारे गए, मायावी राक्षस बहुत बलशाली था। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लेके उस गुफा के बाहर लगा दिया कि ये मायावी राक्षस कहीं दोबारा किष्किंधा के ऊपर आक्रमण न कर दे। लेकिन वापिस आने के बाद में सुग्रीव ने तारा और रुमा दोनों को अपनी पत्नी बना लिया और फिर वहां पर किष्किंधा के राजा बन के रहने लग गए। कुछ समय बाद बाली उस पत्थर को तोड़कर बाहर निकल कर आते हैं और फिर आने के बाद देखते हैं कि सुग्रीव ने उनकी गद्दी ले ली है अपने बड़े भाई की, और यहां तक उनकी पत्नी को भी अपने साथ ले लिया है। तो इस बात से उनको बहुत क्रोध आया और फिर उन्होंने सुग्रीव को बहुत बुरी तरह से मारा और यहां तक कि उनकी पत्नी रूमा को भी लेकर चले गए। सुग्रीव ने ऐसा नहीं किया था कि तारा से विवाह कर लिया था, उन्होंने तो उनको अपनी बड़ी भाभी के समान ही रखा था, लेकिन बाली ने जबरदस्ती रूमा को उसकी सुग्रीव की पत्नी को किडनैप कर लिया, उठा लिया, अपहरण कर ले गए अपने राज्य में। तो इस तरह से हुआ और सुग्रीव बड़े परेशान थे, भगवान राम को पुकारते थे। और फिर जब भगवान राम लक्ष्मण वन में भटकते हुए सीता जी की तलाश करते हुए किष्किंधा पहुंचते हैं तो वहां पर आकर वो सुग्रीव को कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारी पत्नी को बाली ने जबरदस्ती उठा लिया, तो मैं बाली का वध कर तुम्हारी पत्नी को आजाद करूंगा। तो फिर जब भगवान बोलते हैं कि सुग्रीव तुम जाना और कल बाली को ललकारना, अब बाली को ललकारना मतलब मौत को ललकारना, बाली के अंदर इतनी ताकत थी जब कोई व्यक्ति उससे लड़ेगा तो जो लड़ने वाला है उसकी भी आधी शक्ति वो बाली के अंदर आ जाएगी, इतना ताकतवर व्यक्ति डबल शक्तिवान हो जाएगा। और वो बाली के सामने जाकर तुम चिल्लाना ललकारना, तो सुग्रीव तो बड़ा घबरा गया, अरे मैं जाकर बोलूंगा बाली को मरना, ये तो समझे ये तो वही हो गया मतलब ट्रेन आ रही है सामने और ट्रैक पे लेट जाओ वो वाली बात हो गई, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा देखो मुझ पर भरोसा रखो, मैं साक्षात नारायण श्री राम। ठीक है, तो जब वो ललकारने पहुंचे, बाली बाहर निकल मैं तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव, तो उसकी पत्नी तारा ने कहा मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ है, ये जो सुग्रीव दुम दबाकर भाग जाता था तुम्हारे दर्शन से वो आज तुम्हें ललकार रहा है, हाँ मत जाओ तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। तो ये सती पत्नी इस तरह की होती है, उसने रोक दिया था और अंत में वही हुआ, भगवान राम के द्वारा बाली का वध हुआ। तो यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि हमको किस तरह से पत्नी की बात माननी चाहिए और पत्नी को किस तरह से अपने पति को गाइड करना चाहिए। वो खुद ही मिसगाइडेड होगी क्योंकि वो भजन नहीं करती, भगवान को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सेंटर केंद्र नहीं मानती अपने जीवन का, इसी के कारण प्रॉब्लम है सारी। कहते हैं नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभ यासाम स्त्री ना प्रियो भरताम तासाम लोक महोदया। चाहे वह नगरस्थ हो वनस्थ हो, चाहे नगर में रहे पति या वन में रहे पति, शुभ होवा यदि अशुभ होवा, या तो शुभ हो या अशुभ हो जीवन में, यासाम स्त्री ना प्रियाम, वो स्त्री को कैसे करना चाहिए, भरताम तासाम लोका महोदय, उसको अपने पति की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये नहीं अच्छे दिन तो तुम्हारे साथ बुरे दिन तो बाय बाय चाटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से महारानी द्रौपदी से एक बार भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा मिलने के लिए द्वारका आती हैं, ये वाला द्वारका नहीं गुजरात वाला द्वारका, और आकर पूछती हैं कि तुम्हारे तो पांच पति हैं और पांचों के पांचों शक्तिशाली पावरफुल हैं, तो कैसे आप सेवा करती हो कि पांचों आपसे संतुष्ट रहते हैं, हमेशा जब देखो तो आपका गुणगान करते हैं कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, तो ऐसा क्या करती हो। तो सत्यभामा को द्रौपदी वहां पर काफी सारी शिक्षाएं दे रही हैं, तो हम शिक्षाओं का यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक करके, काफी सारी शिक्षाएं हैं। पहला, उसने कहा पति में रुचि रखना नारी का गुण है, अपने पति में रुचि रहनी चाहिए, है ना। ज्यादातर लोगों को तो सेलिब्रिटीज में रुचि रहती है, काश मेरी तो शादी जब छोटी होती ना मेरी तो शादी सलमान खान से होगी, मैं तो शाहरुख खान ही होगा, मेरा तो हीरो, मेरा तो ड्रीम प्रिंस वही है। और लड़के भी सोच रहे होते हैं मैं तो ऐश्वर्या राय, और फिर बाद में जब शादी हो जाती है तो बाद में ये मिला सलमान खान की जगह, तो इस तरह से है ना, वो बड़ा फिर गिल्टी रहता है उनको पूरी लाइफ, उसी के कारण प्रेम नहीं रहता, हमेशा झगड़ा रहता है हमेशा। तुमसे अच्छे अच्छे मिल रहे थे, मुझे तो पता नहीं कौन सा दिन था तुम्हारे से शादी हो गई, इस तरह से होता है। तो ये गलत है। स्त्री को जो भी मिले भगवान की इच्छा समझते हुए पति को अपने पति में, पत्नी को अपने पति में रुचि रखनी चाहिए, और पति को ईश्वर, स्वामी और एकमेव आश्रय मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ये पति की इच्छा के विरुद्ध जाना पत्नी का सबसे घृणित कार्य है, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना। तो अभी लोग सोच सकते हैं इच्छा के विरुद्ध जाना मतलब प्रभु जी अगर हमारे पति देव बोले मंदिर नहीं जाना तो हमें नहीं जाना, नहीं ऐसा नहीं है। अगर पति की इच्छा के विरुद्ध मतलब भक्ति के अलावा कार्यों में अगर वो कहते हैं, और फिर भी हमें मैनेज करना चाहिए जैसे करके कि अगर वो कहते हैं कि नहीं आपको मंदिर रोज रोज नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है एक दिन तो जा सकते हैं, तो उनकी सेवा करें इस तरह से, करें प्रेम पूर्वक कि वो आपको एक दिन मंदिर भेजने के लिए कम से कम संडे मंगल आरती में आ सकते हैं, न्यू ईयर पे आ सकते हैं, फेस्टिवल डेज में आ सकते हैं, सेवा करें उनकी, प्रसाद बनाए उनको की सेवा करें, तो उनका दिल हम जीत सकते हैं। हाँ चले, हाँ तो उनके इच्छा के विरुद्ध भी नहीं गए और अपना काम भी हो गया। और उनकी आज्ञा का पालन मैं हमेशा करती हूँ, द्रौपदी ने कहा, जो आज्ञा देते हैं वो मैं करती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माताओं को सुननी चाहिए, अपनी सास की बुराई कभी भी अपने पतियों से नहीं करती। हाँ तो शुरू हो जाती है, अरे आपको पता है क्या किया आप तो चले गए ए बी सी डी जेड तक पहुंच जाते, लिस्ट लेके तैयार रहती है। ये सबसे बड़ी गलती है। वो बच्चा, वो पुत्र जिसने अपनी माँ के साथ इतने वर्ष गुजारे हैं, वो अपनी माँ की बुराई सुनकर आपसे प्रेम करेगा? और आपने क्या किया उसके मन में, अगर इतना प्रेम भाव को हटाकर दुश्मनी सोची कि दुश्मनी ले आऊं मस माँ को भूल जाएगा, फिर हर टाइम बोलेगा डियर डियर डियर, नो फियर, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ वो फियर में तो आता है लेकिन आपको डियर नहीं बोलता, वो दोनों से डरता है, आप ये बोलेंगे अभी ये बोलेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह के कार्य ना करें। अभद्र और असत्य वचन मैं कभी नहीं बोलती, उन्होंने बोला, मैं कभी भी अभद्र और असत्य वचन कभी नहीं बोलती अपने पति को। अभद्रता से आ गए, रखो रखा है खाना खा लो जाके, ऐसे नहीं। आते ही अच्छे वचन बोलने चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए, वो आप आ गए, आइए आइए बैठिए, थक गए होंगे पूरे दिन के बाद, प्रसाद लेंगे पानी लेंगे तो पानी देना चाहिए, प्रसाद आपके लिए बना दिया है गर्म कर दूं, इस तरह के वचन। चाणक्य पंडित कहते हैं वचनम किम दरिद्रता, भक्तों को सीखना चाहिए। हम तो भक्त मिलते हैं अगर बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा, अरे वचनम किम दरिद्रता, अरे तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, कम से कम मुस्कुराकर हरे कृष्णा तो बोल सकते हो। यही पत्नी अपने पति को बोल सकती है जब वो घर आए हरे कृष्णा, हो सकता है बुरा बोले, एक दिन बोलेगा दो दिन बोलेगा एक दिन तो हर्ट मेल्ट होगा क्योंकि आप हरे कृष्णा बोल रहे हो। स्वीटी डियर बोलोगे तो हो सकता है नाम मेल्ट हो, लेकिन हरे कृष्णा बोलने से मेल्ट होता है एक्चुअली। तो फिर हरे कृष्णा बोलना चाहिए, लेकिन अभी कैसा होता है वो बेल बजाता रहता है फिर आ गए तो बोले कुछ पानी मिलेगा, हाँ हम तो जैसे घर में आराम कर रहे थे, पता है घर में कितना काम होता है, आ गए तुम तो आराम करके एसी के ऑफिस में एसी की गाड़ी में मजे लेकर आ रहे हो। इस तरह से बिहेव करने से क्या होता है, टेंशन बढ़ती है। ये सती का कार्य नहीं है, ये तो रानी लक्ष्मीबाई का कार्य है जो चल रहा है एक्चुअली घरों में। फिर पति से पहले भोजन और शयन नहीं करना चाहिए, द्रौपदी ने कहा सत्यभामा को, मैं अपने पति से पहले ना तो भोजन करती हूँ ना सोती हूँ, पति के सोने के बाद सोती हूँ और पति के उठने से पहले उठकर उनके स्नान आदि का सारा तैयारी करती हूँ, और भोजन क्योंकि वो पति को गुरु के रूप में देख रही है, पति वो जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। तो यहाँ जितनी माता है उनके पति भक्ति में लगे हुए हैं, नहीं लगे हैं तो भगवान से आज प्रार्थना करिए नव वर्ष है कि लग जाए, ताकि आप उनको सती रहकर उनकी सेवा कर सकें, वरना आपको अपना डायरेक्शन चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ता है कभी कभी। और फिर उन्होंने कहा कि वो कार्य कभी नहीं करती जो मेरे पति को धर्म से दूर ले जाए। तो धर्म पत्नी शब्द का अर्थ है जो अपने पति को धर्म के कार्यों में लगाती है, इसका मतलब ये नहीं है जो धर्म के कार्यों से दूर ले जाती है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कि सती किस तरह की होनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं सेई सती प्रेमवती प्रेमवान सेई पति वियोग ये वांछा प्रिय हिते ना गाने अपना दुखे वांछा प्रिया जने सुखे सेई दुई मिले आचरिते। इसने कहा सेई सती प्रेमवती, वो जो पत्नी है सती प्रेमवान सही पति, और उसका पति जो है वो बहुत भाग्यशाली है कि उसको ऐसी पत्नी मिली है। वियोग ये वांछा प्रिया हिते, और दोनों एक दूसरे का वियोग सह नहीं पाते हैं। ना गाने अपना दुखे, वो स्त्री कभी अपना दुख नहीं रोती है। वांछा प्रिय जने सुखे, और सदा दूसरों के सुख के लिए कार्य करती है उनका पूरी फैमिली। सही दो ही मिले आचरिते, और बिना देर किए हुए दोनों दोबारा से मिल जाते हैं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार से मैं गोपियों में राधा रानी को प्रेम करता हूँ कि हमारे से अलग रहा ही नहीं जाता। पति पत्नी का प्रेम इस प्रकार होना चाहिए कि हमसे अलग रहा नहीं जाता। अलग रहने का मतलब ये नहीं कि बस भक्ति छोड़ दी, अब तो घर के अंदर दोनों बैठे हैं, कह रहे प्रभु जी आपने कहा था अलग रहा नहीं जाता, तो अब फेविकोल का जोड़ लगा के बैठे, अलग रहते ही नहीं हम तो एक दूसरे से। अलग रहने का मतलब कि घर को भवन बनाए। भवन रहने का भाव मतलब भगवान का वास स्थान जहां पर हो उस घर में। ये ना सोचें कि पत्नी मेरी भोग्य वस्तु है। पत्नी कौन है? पत्नी भगवान की सेविका है, और मुझे उसको सेवा में लगाना है। अब यहाँ पर जितने लोग आते हैं ये सब जैसे हमें लगता है सेवक हैं, है ना, इन्हें सेवा में लगाना है। तो ना तो इनसे द्वेष करते हैं, ना इनकी बुराई करते हैं, बस इनको एज इट इज जैसे भी करके ये इनके इन प्रकार हैं, इनको सेवा में लगाते हैं। ऐसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को भक्ति में लगाने का उत्तम कार्य क्या? सेवा में लगाना। कैसी सेवा में लगा सकते हैं? उनसे बोल सकते हैं आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, तो आप करिए भगवान के लिए ड्रेसिंग गार्लेंड्स बनाइए, आप उनके लिए वस्त्र बनाइए। अगर कुकिंग अच्छी है तो आप बोल सकते हैं भगवान के लिए भोग बनाइए मंदिर में ले जाने के लिए। तो उनकी जो भी चीजें अच्छी हैं उनकी सेवा में लगाएं। तो इसलिए आपको घर में रहना है, घर में आदेश देना है। ये नहीं कि भोग्य वस्तु समझकर घर में आराम से आनंद ले रहे हैं, फिल्मी गाने चल रहे हैं, FM चल रहा है, ये गलत है एक्चुअली। वो कहते हैं प्रिया प्रिया संगहीना, प्रिया प्रिय संग विना, नाही जिए ए सत्य प्रमाण, मोरा दास सुना ये बे तांदेर दास होई बे, ए भई दुही रखे प्राण। तो उसमें बोल रहे हैं कि स्त्री जब अपने पति से अलग होती है, प्रिया प्रिया संगहीना, और जब वो उनका संग प्राप्त नहीं करती या फिर संग विना, ना ही जिए यही सत्य प्रमाण, जीने का मन नहीं करता जब पति कृष्ण भक्त हो और पत्नी कृष्ण भक्त हो। लेकिन जब कृष्ण भक्त नहीं रहेंगे तो घर के अंदर क्या होगा? टेंशन टेंशन टेंशन, पूरा जीवन गुजर जाएगा, फिर बाद में पेंशन पेंशन पेंशन, और फिर पेंशन भी समाप्त होने के बाद नो पेंशन, दैट्स द टेंशन। तो इस तरह से जीवन खत्म हो जाता है व्यक्ति का। तो कोशिश करें कि आज हम जो स्त्री हैं वो सब क्या करें, अपने पति की सेवा करें, और भक्ति रूप में, जैसे ये पांच कन्याओं के बारे में वर्णन शास्त्र करते हैं। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशिनी। पांच कन्याओं का स्मरण करने से बड़े पाप स्त्रियों के नाश हो जाते हैं। हाँ, तो इस तरह की वाइफ, चेस्ट वाइफ होना चाहिए। हाँ, इस तरह की सती पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। जैसे बताते हैं कि पत्नी को आधा हिस्सा अपने पति के भक्ति का मिलता है। जैसे कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति के बारे में हम हमेशा सुनते हैं। देवहूति एक ऐसी राजा की पुत्री है जो कि मनु है। हम मानव जाति जहां से शुरू होती है, मनु स्वयंभू मनु की पुत्री है देवहूति, और उनको योग्य वर चाहिए अपनी पुत्री के लिए, और वो ढूंढ रहे हैं। और इधर कर्दम मुनि जो कि योग तपस्या बोल से भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, और जब वो कर्दम मुनि प्रसन्न करते हैं भगवान को, तो भगवान के दर्शन पाने पर भगवान कहते हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कहते हैं मैं एक सती पतिव्रता स्त्री चाहता हूं जिससे मैं शादी विवाह कर ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करूं जो आप ही के समरूप हो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, कुछ ही समय में आपसे मिलने के लिए एक राजा आएंगे मनु, और वो अपनी पुत्री आपको प्रदान करेंगे। तो कर्दम मुनि देवहूति से शादी करते हैं, विवाह करते हैं, और विवाह करने के काफी वर्षों तक वो सिर्फ अपनी योग तपस्याओं में लगे रहते हैं। लेकिन देवहूति शादी करने के बाद भी एक बार भी ये नहीं कहती चलिए ना अभी तो विवाह को एक साल हो गया, हनीमून पे नहीं गए हम लोग अभी तक, हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, हम कभी मॉल नहीं जाते हैं, हम कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हैं, हम कभी PVR नहीं जाते हैं, इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं, बस सेवा 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 सेवा। एक दिन जब उन्होंने देखा कि इतनी सेवा कर रही है देवहूति, तो उनसे पूछा तुम मेरी इतनी सेवा करती हो तो यार क्या हाल बना लिया है? शरीर जो तुम्हारा सुंदर था वो मुरझा गया है, तुम्हारा जो तेज था वो शांत हो गया है, तुम बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? जो इच्छा कहोगी वो मैं पूरी करूंगा। तो कहते हैं अच्छा अगर आप इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा है, एक स्त्री जब विवाह करती तो उसकी इच्छा होती है मेरे घर में पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो। तो कहते हैं मैं चाहती हूँ मेरे घर पुत्र हो। तो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अपने योग बल से उनकी पत्नी की सती की सेवा से इतनी शक्ति उनको प्राप्त हुई कि उन्होंने 2 मिनट में क्या किया, अपने योग बल से उनको वापस युवा बना दिया, जैसे वो आई थी वैसे ही बन गई, और उनके लिए एक मानसिक महल बनाया जो मन की गति से उड़ सकता था, चल सकता था, और उसमें सारे ऐश्वर्य विराजमान कर दिए उन्होंने और कहा जाओ अब तुम इसमें आनंद पूर्वक विचरण कर सकती हो। और फिर उनको 9 पुत्री और 1 पुत्र प्रदान किया। पुत्र कौन हुए उनके? हाँ जी, कपिल भगवान, भगवान कपिल, लॉर्ड कपिला। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कहा, वो पढ़ने से हमें बहुत कुछ चीजें समझ में आती हैं, जीवन को किस तरह से रहना चाहिए। तो जो ये देवहूति और कर्दम मुनि थे, इनके 1 पुत्री थी जिनका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया जो थी उनकी, उनका विवाह होता है अत्रि ऋषि के साथ में। अत्रि ऋषि के साथ जब उनका विवाह होता है तो दोनों जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे ऋषिगण। तो पत्नी कभी भी अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं करती थी, बस अपने ऋषि की, अपने जो पति हैं उनकी सेवा में सदा लगी रहती थी। और एक दिन इतनी योग बल से, उनकी शक्ति से अत्रि ऋषि के, कि उनके शरीर से अग्नि प्रकट होने लगी पूरे में। तो भागवतम के 4th स्कंद में प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि तीनों देवता जिन्हें भगवान कृष्ण ने उत्पत्ति किया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों आते हैं देखने के लिए। ये कैसा जीवन है दोनों का, पत्नी पति की सेवा करती है और पति इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो योग बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को देखने के लिए बुला लेता है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, डू समथिंग दैट कृष्णा कम्स टू सी यू। आप कोई ऐसा कार्य ना करें, मैं भगवान को देखना चाहता हूं, भगवान को देखना चाहता हूं। भगवान, आप ऐसा कुछ काम करें, ऐसी कुछ सेवा करें कि भगवान कुछ कहें, खुद कहें वाह ये मेरा प्रिय है। जैसे एक बार हनुमान जी को नारद मुनि ने कहा, पता है भगवान राम की डायरी वो जो लिखते हैं उसमें तुम्हारा नाम ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ मेरा नाम नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? भगवान जो डायरी लिखते हैं, जैसे आप सोचेंगे भगवान कौन सी डायरी लिखते हैं, तो आप जब सुबह सुबह सोकर उठते हैं और फिर मंगला आरती आते हैं और फिर जप करते हैं तो आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप तो हरे कृष्णा बोलते हैं। तो श्री कृष्ण बुक में भागवतम से लेकर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की दिनचर्या एक चैप्टर है, उसमें वो लिखते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपनी रानियों का परित्याग करके 16108 का, और फिर सुबह सुबह स्नान आदि कर ध्यान में बैठ जाते हैं और फिर वो जप करते हैं। तो किसका जप करते हैं? वो तो खुद ही स्वयं कृष्ण है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो तो खुद ही भगवान है। तो फिर वो किसका चिंतन करते हैं? तो वो भक्तों का चिंतन करते हैं, भक्तों को पुकारते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, आप बोलते हैं हरे कृष्णा, वो बोलते हैं ठीक है संदीप प्रभु अमोकला प्रभु, ऐसे करके वो नाम लिख रहे होते हैं। ठीक है ये उठ गया, कितना सो रहा है, कितना जग रहा है, सबके नाम नोट हो रहे होते हैं तो डायरी में। तो वो डायरी भगवान लिखते हैं उसमें, जैसे हम लिखते हैं राम 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 राम, वो लिखते हैं भक्त 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 भक्त, सारे भक्तों के नाम। तो उसी तरह से भगवान लिख रहे थे। तो हनुमान जी को पता चला कि डायरी में नाम नहीं है, तो आकर देखे चुपके से। भगवान बोले क्या है तुम मेरे आसपास घूम रहे हो? कह रहे नहीं बस ऐसे ही कुछ थोड़ा चेक कर रहा था और देखा मेरा नाम नहीं है, पूरा पेज ऊपर नीचे देख लिया कहीं नाम नहीं है। और बड़े परेशान हो गए हनुमान जी, मेरा नाम ही नहीं है कहीं पर भी। हाँ तो भगवान बोले हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा नाम नहीं इस डायरी में नहीं है। क्या भगवान मेरा नाम नहीं है? मैंने पूरा जीवन सिर्फ एक ही चीज बोली राम राम राम, और उसके बाद भी राम राम, मेरा नाम नहीं है इसमें। पूरा ऊपर नीचे देख लिया। तो भगवान बोले हाँ तुम्हारा नाम उस डायरी में नहीं है हनुमान, क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ अपना जाप करो सेवा करो। तो बोले भगवान मेरा तो दिल ही टूट गया, अब कैसे जाप करूंगा कैसे सेवा करूंगा। तो भगवान ने फिर ऐसे अंदर हाथ डाला और फिर यहां से एक छोटी डायरी निकाली, माने का इस डायरी में देखो शायद तुम्हारा नाम हो। तो वो डायरी देखी तो उसके अंदर सबसे ऊपर लिखा था क्या, हनुमान हरिबो। तो उन्होंने पूछा कि भगवान ये अंदर वाली डायरी किसके लिए? तो उन्होंने कहा जो भक्त मेरा चिंतन करते हैं उनका नाम बड़ी डायरी में, जिनका चिंतन मैं करता हूं उनका नाम छोटी डायरी में। तो भगवान की स्मॉल डायरी, छोटी डायरी में तो वही यहाँ पर है, ब्रह्मा विष्णु महेश देखने के लिए आ रहे हैं कि कैसा क्या कार्य कर दिया अत्रि ऋषि ने और देवहूति माता ने, तो उन्हें अपने शरीर से अग्नि प्रकट कर दी। और फिर जब वो तीनों देखने आए, वाह क्या योग शक्ति है, पूरा शरीर जल रहा है लेकिन जल भी नहीं रहा, अग्नि में है भी और नहीं भी है। तो उन्होंने फिर बोला, क्या चाहते हो तुम इस तरह के योग प्रकट करने का फल? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं हमारे घर आपके आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हो। तो फिर ब्रह्मा जी की कृपा से उनके घर में सोम, जो कि चंद्रमा के राजा हैं, सोम प्रकट होते हैं। विष्णु जी की कृपा से उनके घर में दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, वो प्रकट होते हैं। और शिव जी की कृपा से उनके घर में दुर्वासा ऋषि प्रकट होते हैं। तो इस तरह से तीन मेन जो हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, दुर्वासा ऋषि हाँ, वो इतने क्रोध में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो उनके पिता अत्रि ऋषि और अनुसैया माता से वो प्रकट होते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मचारी का पालन करने से पुरुष में शक्ति आती है। जैसे शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि आप नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, आपको परस्त्री संघ, परस्त्री पुरुष संघ त्याग देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मैरिज में, तो प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, आई थिंक यू पीपल आर लिटिल कंजर्वेटिव, आप लोग कंजर्वेटिव हैं कि यू से नो इलिसिट रिलेशनशिप अमेरिका में, इट इज वेरी कॉमन। अगर इतने कंजर्वेटिव होकर आप अपने धर्म प्रचार करेंगे तो आपके साथ आपके आंदोलन में कोई नहीं जुड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव? तो वहां पर हेग्रीव प्रभु थे, उन्होंने कहा, प्रभुपाद ही मीन टू से बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव से कहना चाहते हैं कि हम कई चीजों को रोकते हैं, आप शराब मत पीजिए, आप मांसाहार मत करिए, आप परस्त्री संग मत करिए, आप जुआ मत खेलिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अगर उस सेंस में आप कंजर्वेटिव कह रहे हैं हमको, तो हाँ हम कंजर्वेटिव रहकर ही अपने आंदोलन का प्रचार करेंगे, लेकिन अपने नियमों को नहीं बदलेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब यू आर अगेंस्ट मैरिजेस, तो प्रभुपाद जी ने कहा, नो आई एम नॉट अगेंस्ट द रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस, मैं शादी विवाह और संग करने के खिलाफ नहीं हूं। पुरुष और स्त्री संग कर सकते हैं अगर वो बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं, कृष्ण भावना भवे। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तो आशा करता हूं मेरे एक एक भक्त को 100-100 बच्चे उत्पन्न करने चाहिए और सबको कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा। तो रिपोर्टर फिर चुप हो गया, वहां से चुप हम निकल, कह रहे तो अलग ही परंपरा चला रहे अपने, वो तो उसी तरह से सोच सकते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, अगर आपको पुत्र पुत्री की उत्पत्ति नहीं करनी है तो आपको ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, चाहे आप गृहस्थ हैं चाहे आप ब्रह्मचारी आश्रम हैं। ब्रह्मचारी का पालन करने से व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है, और सती व्रत का पालन करने से स्त्री के अंदर शक्ति आती है। तो वो भी शक्तिमान, ये भी शक्तिशाली, दोनों फिर घर में शक्ति का भंडार ही भंडार होता है। और उनके घर में जो पुत्र पुत्री होते हैं वो भाग्यशाली भक्त बनते हैं आगे जाकर और प्रचार करते हैं। कहते हैं फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, परिवार जो साथ में भजन करता है वो साथ में क्या करता है, फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, साथ में रहते हैं वो हमेशा, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। जैसे आजकल डाइवोर्स रेट इतना बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए, अभी एक घर में शादी होकर आई, नई शादी, और सुबह सुबह लड़की सोकर उठी 8-9 बजे के करीब, उठने का टाइम क्या है 9 बजे, नई शादी हो के आई, थक गई है बहुत ज्यादा, तो सुना उसने झगड़ा हो रहा है घर के अंदर। और झगड़ा किस बात पे हो रहा है कि है ना, माँ जो है वो झाड़ू लगा रही है, भाई बहू तो उठी नहीं तो माँ ही झाड़ू लगाने लगी, माँ झाड़ू लगा रही है, और बेटा कह रहे नहीं नहीं माँ आप मत लगाओ मैं लगा देता हूँ, तो माँ कह रही नहीं नहीं तू जा, तू पत्नी का ख्याल रख मैं लगा देती हूँ। तो दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है, झगड़े को सुनकर बहू रानी उठ गई है और उठकर बोल रही है, अरे क्या बात है आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं हम झगड़ा इसलिए कर रहे हैं, झाड़ू कौन लगाएगा, माँ लगाएगी या बेटा लगाएगा, माँ लगाएगी या बेटा लगाएगा। कह रहे झगड़े की क्या बात है, एक दिन माँ लगा लिया कर, एक दिन बेटा लगा लिया कर, मैं तो आराम ही करूंगी। तो ये सती नारी नहीं है इस तरह की, उसको कर्मठ होना चाहिए, कार्य करने चाहिए घर के अंदर अपने सारे। कहते हैं अगर गुड वाइफ हो तो व्यक्ति हैप्पी रहता है, खुश रहता है, अगर अच्छी पत्नी हो और बुरी पत्नी हो तो वो फिर फिलोसोफर बन जाता है। बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, तो इसलिए बेटर है कि हमारे को जो भी पत्नी मिली है, हाँ या फिर जो भी पति मिले हैं उनके साथ हम सती व्रत का पालन करते हुए और पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपने जीवन को भक्ति में लगाएं। तो किस तरह से भक्ति में लगा सकते हैं? गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को घर में कम से कम 3 घंटे कीर्तन करना चाहिए, इस तरह का वर्णन है, 3 घंटे कीर्तन। तो 3 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 15 मिनट तो रोज कीर्तन होना चाहिए। आपके घर में जो विग्रह हैं उनको खाली भोग लगाने की वस्तु ना समझे कि भगवान जो है उनकी लाइट जलती है, ऑल्टर ऑन होता है, पर्दा हटाते हैं, भोग लगाते हैं, जल्दी जल्दी घंटी बजाते हैं, ऑल्टर बंद करते हैं, भोग निकाला, प्रसाद बन गया, खाया, बस इतना ही संबंध है उन भगवान की सेवा। ये सोचते हुए कि घर के हेड कौन है, ठाकुर जी भगवान, उनको ध्यान केंद्रित करते हुए पत्नी कुकिंग करे, पति भोग लगाए, पत्नी आरती के लिए बर्तन धोए, पति आरती करे, उसके बाद वो स्टिचिंग करे, वो कपड़े से वो कपड़े बनाए, वो कपड़े पहनाए भगवान को। तो दोनों का जीवन भगवान को केंद्र रखते होना चाहिए। एक बच्चे को श्लोका याद कराए, दूसरा बच्चे को आरतियां याद कराए, तो कुछ भी, एक करताल सिखाए, एक कीर्तन सिखाए, तो इस तरह से जो होगा घर, वो घर असलियत में अच्छा घर होता है। और एक सती स्त्री का और चर्चा करेंगे, थोड़ा समय लेंगे आपका 5 मिनट। एक सती स्त्री है जिनके बारे में हम सुनते हैं, मीराबाई, जिनकी कम चर्चा की जाती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको बोला शी इज एन अल्टीमेट डिवोटी, बहुत ही उत्तम दर्जे की भक्त है। मीराबाई कहती थी कि अगर किसी के जीवन में आपका पति हो सकता है कि भक्त ना बन रहा हो आपके अथक प्रयास के बाद, तो आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण को अपने जीवन में पति बना लेना चाहिए। और ऐसे देखा जाए तो हम सब, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, हम सबके पति कौन है? कृष्ण। इसीलिए उनका नाम है जगत पति। पति का मतलब होता है पालन करता इति पति, जो पालन करता है। इसीलिए वो नाम उनका जगन्नाथ भी है, जगत के नाथ। जैसे कहते हैं स्वामी, मेरे स्वामी आ गए, मेरे नाथ आ गए, तो जगत के नाथ कौन है? जगन्नाथ। तो चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, उन सबके पति कौन है? कृष्ण। तो किसी का पति या पत्नी अगर बहुत प्रयास करने पर भी भक्त ना बन रहे हो, तो फिर उनको कृष्ण को अपने जीवन का प्राण धन, अपना नाथ, अपना पति बनाकर अपना जीवन जीना चाहिए। जैसे मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सर पर मोर मुकुट है वो कृष्ण ही मेरे पति हैं, क्योंकि उनके पति जो थे उन्होंने तो इवन उनको क्या कहा, विष का प्याला पी लो, जहर का प्याला पी लो। और इतने बड़े मेवाड़ के राजा अपनी पत्नी को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं? भक्ति करती हैं, और वो भक्त बनाने का प्रयास भी कर रही है लेकिन वो भक्त नहीं बन रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा तुम विष का प्याला पी लो। उन्होंने कहा देखो अगर मैंने इस प्याले को पिया तो उसके बाद एक ही चीज होगी, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर मैं संसार छोड़कर चले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है विष का प्याला पी रही हो तो इसका मतलब तुम्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने विष का प्याला पिया लेकिन कृष्ण कृपा से आप सब जानते हैं क्या हुआ, वो बच गए। और फिर उन्होंने कहा कि अब आपके लिए तो मैं मर चुकी हूं और अब मैं अपने कृष्ण के लिए अपना जीवन जीऊंगी। और फिर वो वृंदावन आती है और वृंदावन आकर वो बोलती है कि मैं आ गई हूं और वृंदावन में कुटिया बनाकर यहां भजन करूंगी। तो उस समय हमारे गोस्वामी षट गोस्वामी वृंदावन में वास करते थे। तो मीराबाई ने आकर कहा कि मैं यहां पर वास करना चाहती हूं। तो गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, स्त्री वृंदावन में वास करने योग्य नहीं है, आप जाइए, ये तो पुरुषों की स्थली है, यहाँ पे पुरुष भजन कर सकते हैं, स्त्री भजन नहीं कर सकती। तो जब इस तरह से बोला गया तो मीराबाई ने एक स्टेटमेंट कहा कि अच्छा यहां पर और भी पुरुष रहते हैं, मुझे तो लगता था यहां पर सिर्फ एक ही पुरुष रहता है, आपने कहा यहां पर पुरुषों के रहने का स्थान है। तो उन्होंने कहा मतलब? बोले मुझे तो लगता था पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सब तो उनकी भार्य हैं, भोक्ता हैं। इसीलिए कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकाम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृगच्छते। वो उसी व्यक्ति को शांति मिलेगी जो जानेगा हम सब भोगने की वस्तु हैं और भोगने वाले कौन है? कृष्ण। इसीलिए उनको जो खाना अर्पित करते हैं उसको कहते हैं भोग, आप भोग लो, और फिर बाद में वो प्रसाद बन जाता है। हम जब उन्हें लगाते हैं उसका नाम ही है भोग, भोग आने के बाद भोग नहीं होता, हम भोग नहीं सकते हैं, भगवान भोग सकते हैं उसको। तो इसलिए मीराबाई ने कहा कि अगर यहाँ पर भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं, बाकी सारी तो भार्य हैं, स्त्रियां हैं उनकी। तो जब ये बात गोस्वामी को पता चली तो उन्होंने कहा अरे आपने तो हमारी आंखें खोल दी, हमने तो इस तरह से सोचा नहीं। और फिर उनको एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है आप यहाँ आई और गुरु परंपरा में जुड़कर ज्ञान प्राप्त करिए। तो उन्होंने गुरु परंपरा को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण से जुड़ना चाहती थी, इसी के कारण उनकी ज्यादा चर्चाएं भी हम नहीं करते हैं। लेकिन हम ये शिक्षा उनसे ले सकते हैं कि हमारे जीवन में पति या पत्नी अगर सहयोगी ना भी हो तो कृष्ण को एकमेव कर्तव्य बनाकर, एकमेव टारगेट, लक्ष्य बनाकर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। और बस हमको करना क्या है, ध्यान पूर्वक जप करना है और अपने परिवार में अपने पति पत्नी की एक दूसरे की सेवा करनी है, अगर कराने के लिए तैयार हो तो, नहीं हो तो कृष्ण की सेवा करते हुए अपने जीवन का चलाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई घरों में बहुत ज्यादा क्लेश हो जाता है, जैसे एक घर में 20 साल शादी की एनिवर्सरी थी, बुलाया गया प्रवचन करने के लिए, 20th ईयर ऑफ एनिवर्सरी, तो पति जो था वो बड़े उदास भाव से बैठा था और पत्नी बोल रही थी, अरे आज आपने सुबह से एक बार भी हैप्पी एनिवर्सरी डे नहीं कहा, आपने ना तो कुछ गिफ्ट दिया, आप यहीं के यहीं बैठे और मुंह बना के बैठे, क्या हो गया? कह रहा कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं, मैंने तुमसे 20 साल पहले लव मैरिज करी थी और जब मैंने लव मैरिज की तो तुम्हारे पिता ने कहा था कि देखो मेरी पुत्री को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तो अगर मैं जेल गया होता तो मुझे 20 साल की कैद होती पर आज मैं आजाद हो गया होता, लेकिन ये ऐसी कैद है आजाद। तो ऐसी कैद बनाने वाली स्थिति ना आए कि आपके पति देव भी बाहर बैठकर सोचते रहे कि काश मैं भी जेल गया होता तो ज्यादा बेहतर था। तो अपने घर को कृष्ण भावना भवित बनाए, जप करें। ज्यादातर देखा गया है कि पति देव तो भक्ति करते हैं लेकिन पत्नियां भक्ति करने में जी चुराती हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। वैसे माताएं वैसे हृदय से बहुत सारी बहुत सॉफ्ट कोमल होती हैं, वो चाहे वो भक्ति करें तो बहुत अच्छी भक्ति कर सकती हैं और करती भी हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कृष्ण को एक में अपने जीवन का टारगेट बनाकर हमें जीवन यापन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पंचदत्त गौड़नताई की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।
इस वेश में शांत मुकुंद प्रभु के।